Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra.
धन्यवाद निशित. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के आज के अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार चंद्रशेखर. चंद्रशेखर जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
थैंक यू, धन्यवाद.
और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस मेरे सहयोगी निशित कुमार से.
The headlines: India's equity benchmark Nifty 50 hits a new all-time high while Sensex ends near 82,000 mark. Union Minister Jitendra Singh says Jan Dhan Yojana ensures financial inclusion and pivotal in women empowerment. And oil prices shed over 1.5% today amid concerns over weak Chinese demand.
प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में सत्र के दौरान निफ्टी नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचा, जबकि सेंसेक्स 82,000 अंक के करीब बंद. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की वित्तीय समावेशन और महिलाओं को सशक्त करने में अहम भूमिका रही है और चीन की कमजोर मांग की चिंताओं के बीच तेल की कीमतों में 1.5% से अधिक की गिरावट आई. और सबसे पहले शेयर बाजार. मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में भारत के प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सकारात्मक रूख के साथ बंद हुए. सत्र के दौरान निफ्टी नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया. हालांकि आखिरी सत्र में मुनाफा वसूली ने सूचकांक को नीचे खींच लिया और 35 अंक या 0.14% की बढ़त के साथ 25,052 पर बंद हुआ. सेंसेक्स 74 अंक या 0.09% बढ़कर 81,785 पर बंद हुआ. बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.04% बढ़ा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.12% गिर गया.
India's equity benchmark indices Sensex and the Nifty ended on a positive note in a volatile trading session amid mixed global cues. Nifty 50 reached an all-time high during the session, although profit booking in the last session dragged the index lower to settle at 25,052 with gains of 35 points or 0.14%. Sensex closed the session 74 points or 0.09% higher at 81,785. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose 0.04% and the small-cap index fell 0.12%. In the Sensex index, 20 out of the 30 companies registered losses. The major laggards were Asian Paints, which lost 1.24%, Maruti lost 1.11%, and Nestle India shed 1.02%. Conversely, the top gainers today were Bharti Airtel with 2.2% gain, IndusInd Bank with 2.1% gain, and Infosys added 2.06%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 20 sectors traded in loss. The top laggards were utilities with 0.44% loss, commodities with 0.40%, and FMCG with 0.38% loss. The top gainers today were tech, which got an uptick of 1.31%, IT gained 1.24%, and healthcare added 0.91%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as out of 4,056 companies, shares of 1,815 companies advanced, 2,147 declined, and 94 remained unchanged. Chandrasekhar ji, we have been witnessing very volatile sessions off late, especially if we talk of the last 4 or 5 sessions. It's been really a topsy-turvy journey until now. What could be the possible reasons behind all this? Well, if I would put it, it's a topsy-turvy journey. But if we look at the Sensex is at a very high point, and obviously Nifty is also following the same. It's at a record level. So what I would see is what we are witnessing as a consolidation in the market.
Mm-hmm.
And probably after some consolidation, we'll have some move on either side. It could be upside. Most probably it would be upside because of the various factors, global as well as domestic.
Mm-hmm.
The biggest factor which will influence the market is the recent announcement by Fed chief at the
right.
Jackson Hole meeting that U.S. Fed is contempt or may go in for a rate cut. If the U.S. Fed goes in for a rate cut, probably we will also follow suit sometime in October or maybe November or something.
Yeah, the next MPC.
We'll follow suit.
True.
If that happens, the market will move up, taking cue from these factors. And if you also look at the global markets, global markets is also giving a mixed signal. There's no one-way market movement. Some market, U.S. market yesterday closed around the same level. And if you look at the markets in say Tokyo or Seoul or Tokyo, Seoul, they were up, and Shanghai market was a bit down.
Mm-hmm.
So there's a mixed signal. And what I see is that the markets currently are in a consolidation
phase. Right. You just mentioned about the Fed chief, Jerome Powell, kind of signaling something coming this weekend probably. Are we really sitting on that, and the market really sitting on that and waiting for that thing to happen before the big churn happens in the coming week?
Yeah, market is definitely waiting for what the U.S. Fed does. But at the same time, there are other global factors also, like escalation of the Russia-Ukraine conflict and the problems in the Middle East and the problems in the Taiwan. So all these factors are also there. So that's why market is just at the moment, it seems to be in a wait and watch mode.
ठीक है सारी बातों के बावजूद ये बात है कि पिछले 7 दिनों में हम ये देख रहे हैं कि जो लगभग वो हरे निशान पे बंद हो रहे हैं और निफ्टी से पहले मैं ये सवाल आपसे ले लेता हूं चूंकि इसी पे अभी चल रही है बात कि अगर हम सेगमेंट की बात करें खरीदारी की बात करें किसी कंपनी की बात नहीं करें तो किस सेगमेंट को आप सोचेंगे कि अभी आपने कहा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो दुनिया में जो हालांकि जो दुनिया में उथल पुथल है अभी कुछ कम दिख रहा है वैसे कोई संकेत बड़ा नहीं दिख रहा है तो आपको क्या लगता है कि जो कस्टमर्स हैं उनका मनोभाव क्या होना चाहिए उनका किस सेगमेंट की तरफ उनको जाना चाहिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए
सेगमेंट तो कह पाना जरा मुश्किल होता है क्योंकि देखिए हर एक सेगमेंट में अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मर्स होते हैं जो कि अच्छा करते हैं जैसे बैंकिंग में तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जो बड़े बैंकों के भी स्टॉक्स हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको सेगमेंट के साथ साथ अपने स्टॉक्स को और कंपनियों को भी देख के चूज करना पड़ेगा कि कहां आपको इन्वेस्ट करना है और जहां तक जैसे आज का ही सेक्टर है तो आज जो है आईटी फार्मा हेल्थ केयर बढ़ा है बल्कि और जो बैंकिंग सेक्टर है एफएमसीजी है ऑटो है ये डाउन हुआ है तो अब ऐसा कोई कारण तो नहीं है कि जो जैसे कि कोई एक्सप्लेन किया जा सके एक्सेप्ट कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इन सेक्टर्स में सेक्टर्स ने अच्छा किया है तो बैंकिंग सेक्टर मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर में बहुत प्रॉमिस है बैंकिंग सेक्टर ऑटो सेक्टर ये जो है आईटी सेक्टर जो है वो यूएस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यूएस की पॉलिसीज क्या होती हैं और हमारा जो करेंसी का रेट है उस पे आईटी सेक्टर डिपेंड करता है लेकिन बैंकिंग और ऑटो सेक्टर तो ये तो अच्छे परफॉर्मर्स हैं
एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा और श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो विदेशी जो निवेशक हैं और जो घरेलू हैं दोनों का मनोभाव कई बार उलट दिखता है कोई खरीदता है तो कोई बेचता है बाजार एक ही है ऐसा क्यों होता है
नहीं ये तो आपके अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है जैसे कल के मार्केट में जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब 1,500 करोड़ इन्वेस्ट किया है जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने सेल किया है तो ये तो अपनी स्ट्रेटजी होती है क्योंकि उनको लगा कि अभी ये भाव ठीक है तो उन्होंने बेच दिया और जो खरीदने वाला होता है उसको लगा नहीं अभी इसमें और दम है तो वो खरीदता है तो ये अपने अपने इंडिविजुअल
एक सवाल जुड़ा हुआ निफ्टी से 1 अगस्त को जो है निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ये रहा था ऑल टाइम हाई ये बनाया था आज सत्र के दौरान भी ऑल टाइम हाई पे गया, न्यू ऑल टाइम हाई पे गया, तो इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं, इस 27 दिनों के सफर को?
नहीं, 27 दिनों का सफर तो अच्छा ही रहा है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो वन वे मूवमेंट तो कभी देता नहीं है, वो थोड़ा चढ़ता है, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर वो मतलब आप इंट्राडे में भी देखें, एक दिन में भी स्टॉक जो मार्केट है वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जैसे आज भी ऊपर गया लेकिन फिर क्लोज जो हुआ वो थोड़ा नीचे आकर के हुआ, जबकि वो कल से तो ऊपर है, लेकिन बट अगर आप देखें तो इंट्राडे में उसने स्टॉक मतलब ऑल टाइम हाई टच किया है, तो ये स्टॉक मार्केट का मूवमेंट है ये, और ये ऐसे ही चलता है, क्योंकि अगर वन साइड मूवमेंट हो जाए तो फिर मार्केट ही
राइट. चंद्रशेखर जी, जस्ट टेकिंग फॉरवर्ड योर पॉइंट, एज आई जस्ट मेंशन दैट इट्स मोस्टली साइक्लिकल, व्हाट गोज अप सडनली कम डाउन. एट द मोमेंट वी आर सीइंग द मार्केट्स एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ कोर्स, बट टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड कंपनीज, ऑफ कोर्स यू आर नॉट टेकिंग नेम्स हियर, बट मोस्ट or many of the companies, if we may say, are overvalued, if we may say. Overvalued, their valuations are at their all-time high. And probably a due correction is overdue. So is there a kind of a warning in the air for investors and people alike, retailers of course, mostly we target the retailers, to just exercise a bit of caution in that?
Yeah, caution is always advisable because, you know, to say that stocks are overvalued or undervalued is a individual perception, or maybe it depends upon how one looks at the stocks, you know.
The matrices some, as well, the P and the...
the P, yes. The ratios, you know, one can
yes,
look at.
Yes.
At the same time, you know, they have the potential, because the market is basically not about the current earnings, but it is also about the future earnings. So many stocks and many companies, they have the potential to grow mm-hmm. and to grow faster, because as the economy grows, mm-hmm. and they will also grow. So there is a lot of potential in some good companies' stocks.
Talking of Chandrasekhar ji, in the recent times, especially in the past, I'd say, let's say a couple of months now, the primary market has seen a lot of upheaval. In fact, the primary market is where the action is happening in the past couple of months. Like, of course, again, we are not taking names here, but we have seen companies getting listed at 100, more than that percent of, of a premium. So is this actually the time? There was a time before, let's say, a couple of months back wherein the market was a bit lull as far as the primary markets are concerned. Of course, in 2022 and 23, it was again a boom time for the IPOs. But this time again, if we look at the past couple of months, it's again a boom time again. So what's the reason behind that?
Yeah, because people are, I'll tell you the main reason is people think because the individual stocks of the blue chip companies are very high. Mm. So many people think that they have missed the bus. Mm. So they want to ride down to the IPO market. And so that's why the IPOs are getting oversubscribed several times, you know. Recently, many of the IPOs have done well, you know. Every other day we hear about...
Exceedingly well, I'd say.
Yeah.
I mean, I don't remember in the past maybe few months now wherein a company or any IPO has actually been listed at a discount.
Yeah, we haven't heard of IPOs listing at a discount. You know, but I would here say that individual investors, you know, they should exercise some caution, because if they want to go long term, they must see who the promoters are, what the sure. project is, you know, and not because initially it may look good, but in the long run, they may come under pressure.
One more sub-point here, Chandrasekhar ji, talking of the primary market, the IPOs, the SME IPOs, besides the main board IPOs that we are discussing now, the SME IPOs have been doing exceedingly well, really exceedingly well, wherein, the premium listing have actually been, you know, in many of the cases, like more than 200% or more than that. This is something astonishing, isn't it?
Yeah, this is, why SMEs are attracting so much investors, you know. But I think one has to take a conscious decision, you know. All SMEs may not
do very well. But I mean, one shouldn't. It shouldn't be a herd mentality for everyone, you know, to get into the IPOs or to grab them at any cost. You know, they have to take a conscious decision. They have to go by the balance sheet, the track record of promoters. So that is where one has to exercise caution and not go by the herd mentality.
Taking this discussion forward, now that we are discussing the primary markets, I'm sure, you know, our listeners would also be very much interested in knowing this, because many of them, we have been getting complaints, we have been hearing those, you know, concerns all over the space that they are not getting allotments. That is the primary concern. So there are different categories, of course, for the retailers, for the HNIs, for the small SNIs and the big HNIs, and of course the QIBs and all. So if at all one has to invest, if one is capable enough with that kind of money, where, in what category should they be putting in their money?
You know, from the IPO, you know, it has become a kind of lottery. You know, you apply, you may get, you may not get. Mm. So, there's a method for allotment of shares, and it's basically a lottery. So one, one can't say much about it. But if at all, you know, people think that the company holds a lot of promise, so they can buy from the secondary market, wait for the IPO initial boom to settle down, and then invest, you know. Initially, because many of the people, they get allotment and they sell whenever...
90% of the time.
Yeah, they sell.
Yes.
Whenever they are getting a good price or good appreciation.
Yes. Yes.
So, a serious investor, and especially the retail investors, those who want to be long-term investors, they should wait for the initial boom to settle down.
The froth to then, settle, yes. Yes.
And then invest.
Absolutely.
रुपये का हाल जानते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.96 रुपये पर बंद हुआ. दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 100.97 पर कारोबार कर रहा था. और अब एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं. पांच प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से दो सूचकांकों ने आज सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार किया. जापान का निक्केई 0.22% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.02% चढ़कर बंद हुए. इसके विपरीत हांगकांग का हैंगसेंग 1.03%, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.40% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.22% गिरकर बंद हुए. प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज मिले जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे. अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.81% बढ़ा, फ्रांस का कैक 0.47% बढ़ा, जबकि लंदन का फुटसी 0.13% नीचे कारोबार कर रहा था.
Ironical, Chandrasekhar ji, if we look at the Asian and the European markets, you know, especially the Hang Seng and the Nikkei and the Kospis and the DAC and the CAC, probably all of them, FTSE even, all of them are probably waiting for that big bang kind of decision or announcement coming from Jerome Powell. Because we won't see much of a movement. It's mostly flat, you know, flat trading happening all over.
Yeah, it is, as we discussed earlier, it is in a consolidation phase, you know, and if you, even I tried to look at the futures market also, and like Dow futures and other future market, so there was also not much activity. I mean, they were trading around the same zone.
Right.
So, I mean, the people are not taking chance. I mean, they're just waiting. They're just waiting for the Fed to do something.
Right, right. We only hope it doesn't turn out to be the damn squib, as the proverb goes. And moving on to the U.S. markets now, the U.S. stocks had quite a session yesterday. The Dow Jones Industrial Average finished just above the flat line to claim another back-to-back record high. The benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq Composite each closed up around 0.2%.
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री जनधन योजना की भूमिका निर्णायक रही है. उन्होंने कहा कि इस योजना ने हर घर में महिलाओं को सशक्त बनाया है. साथ ही यही बताया कि जनधन खाता धारकों में से 55% से अधिक महिलाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसने पीएम किसान किस्तों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया और लीकेज और चोरी को समाप्त कर दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय सुधारों में से एक बताया। मंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना ने आम नागरिकों की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा है। चंद्रशेखर जी, 10 साल हुए हैं जनधन योजना को, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, पहली प्रतिक्रिया इसके बारे में?
नहीं, इसने बहुत सक्सेसफुली, जनधन योजना ने बहुत सक्सेसफुली जो है 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसा कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज ही कहा है कि करीब करीब 53 करोड़ अकाउंट हैं, जनधन अकाउंट हैं, और जिसमें कि औसतन करीब करीब 4,500 जमा हैं। तो अगर हम निकाले तो करीब 2.5 लाख करोड़ के करीब अमाउंट जो है जमा है। इन शुरू शुरू में ये एप्रिहेंशन था कि शायद ये पता नहीं कि अकाउंट खोले जा रहे हैं, ये कितना सक्सेसफुल होता है, लोग पैसा जमा करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जो 10 साल का अगर हम देखें तो लोगों ने ये एक तरीके से आम जनमानस को जो है फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ दिया है। और अकाउंट होना तो बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो अकाउंट होते हैं फिर और बहुत सारी सुविधाएं जो बैंक ऑफर करता है उनका फायदा उठा लेते पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का जो मनी ट्रांसफर का जो है,
जी हाँ,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का,
जी जी,
उसमें जो लीकेज होती है वो अब नहीं होती है, बिल्कुल, मतलब लीकेज होती ही नहीं है उसमें,
बिचौलियों को भी,
हाँ, बिचौलिया जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गए। और जैसे ये पीएम किसान सम्मान निधि वगैरह इस तरीके के जो भी प्रोग्राम्स हैं उससे जो भी पैसा जिसको मिलना है वो उसी को अकाउंट में सीधे चला जाता है।
इनफैक्ट चंद्रशेखर जी, वी जस्ट मेंशन अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन व्हेन वी टॉक ऑफ द जनधन अकाउंट, ऑफ कोर्स इट्स बीन अ गेम चेंजर, यू नो, द पास्ट 10 इयर्स यू हैव सीन एवरीवेयर दैट इट्स बीन ऑल ओवर द प्लेस। ऑफ कोर्स द डीबीटी हैज प्लेड अ पिवोटल रोल, यू नो, इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन थिंग, बट वी आर मिसिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर ऑफ द यूपीआई ट्रांजेक्शन्स, विच इज रियली बीन रिवोल्यूशनरी। इफ यू लुक एट इट, यूपीआई इट्स growing like anything, it's humongous. How important it is, I mean, the Jandhan account has been instrumental in promoting the UPI payments and the system itself.
Yeah, UPI is a, UPI is a definitely a game changer, and it has, you know, it has transformed the way we transact small transactions. Right. You know, and especially in rural areas, or you go anywhere, you know, people will take out their mobile and make the payment.
The sheer ease of, you know, transaction.
Sheer ease of, you don't have to carry money, even if you forgot your wallet, at least the mobile is with you, so you can make payments. True. And the UPI Lite, you know, which is still better, you know, there's a limit of, you can keep 2,000 rupees in UPI Lite wallet, and you can make payments, small payments. So it has eased the life of the people. And now the biggest thing is that now the RBI governor has said that they are coming out with a ULI, Unified Lending Interface.
Right.
You know, that will further revolutionize the whole financial sector.
So UPI ke tarz pe hi itna aasan banayega
karz lene ko. Kyunki wo jo ye voluntary hoga ki aap apni information ULI ko dein, fir wo uske hisab se aapki jo kitni credit worthiness hai ya aapko kitna loan mil sakta hai, ye wo tay karega, aur aapko loan lena bahut aasan ho jayega.
Aasan ho jayega. Bahut sare jo dastavej hain uski zarurat nahi padegi, aur kendriya bank bada isko aasan kar dega.
And let's also not forget about the various welfare schemes of the government, the funds gets transferred into the beneficiary's account. So the DBT, as we mentioned earlier, and of course the engine has been the Jan Dhan account. We remember the times when people used to say that the Jan Dhan and mostly the UPI, if we talk about it, are the street vendors. Are they going to flash you that QR code so that you can make the payment? When we see today, everywhere, out in the streets, even the smallest of vendors, they do flash that QR code to make the payment.
Yeah, everyone. In fact, you know, you don't have, even if you hire e-rickshaw, you can make a payment using the UPI, or maybe if you buy vegetables, you can make the payments. You know, I mean, it has UPI has gone all over the place. You know?
Right.
अच्छा, अभी भी कुछ ऐसा देखा गया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका आधार कार्ड मिसिंग है या कुछ है, तो वो जनधन अकाउंट चाहते हैं लेकिन खुल नहीं पा रहा है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे खुले उनका?
नहीं, आधार कार्ड तो बनाने में कोई दिक्कत होगी नहीं, आपके पास सिर्फ एक प्लेन में
है, कहीं और मिस के, मतलब कहीं हाँ। और पड़ा है तो नया नहीं है, अब एड्रेस चेंज नहीं है, बैंक जाते हैं उनका काम हो नहीं पाता। ये काफी गरीब लोग हैं, कोई काम करने वाली है या कोई रिक्शा पुलर है, ऐसे लोग हैं।
नहीं देखिए, आधार में कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, आधार में नंबर इम्पोर्टेंट है
जी।
तो यदि अब नंबर तो आपको कहीं ना कहीं संभाल के रखना पड़ेगा
जी, जी, जी।
कार्ड आपके पास नहीं भी है तो आपके, क्योंकि अगर आपके पास नंबर है तो आप कार्ड आपको मिल जाएगा, और आधार जो पूरा सिस्टम है वो नंबर बेस्ड है, तो एक यूनिक नंबर है आपको, यूआईडी जिसको बोलते हैं, वो आपको दिया गया है, तो वो नंबर है, उस नंबर से आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, उसमें आपकी फोटो है, आपका एड्रेस है, आपका डेट ऑफ बर्थ, तो सारे डेटा उसमें है। तो अगर नंबर तो कहीं ना कहीं आप
जाहिर तौर पे
रखना पड़ेगा।
दैट इज वन ऑफ कोर्स चंद्रशेखर जी, बट ऑल्सो टॉकिंग ऑफ not actually having the burden of carrying that card physically, we do have the DigiLocker system as well.
Yeah, wherein, yeah, DigiLocker you can keep.
Bilkul sahi kaha.
Wherein you can actually store not just the Aadhaar thing, but many of your important government documents, wherein you can access that anytime, anywhere, 24/7/365. Yeah. So that's another revolutionary thing, if we may say, of the DigiLocker. It has also come up in recent times only. Moving on to crude now, the oil prices fell more than 1.5% today on persistent concerns over the Chinese demand and elevated risks of a broader slowdown. In the global crude market, Brent crude was trading 1.57% down to trade at $78.30 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate, that is WTI, was trading at 1.79% down at $74.18 per barrel when reports last came in. Chandrasekhar ji, where do you see this crude going from here? China's demand, of course, is ebbing a bit. So, what do you have to say about it?
Yeah, Chinese demand is influencing the crude prices at the moment. But we don't know how the winters will be, because winters, you know, actually the crude demand goes up in winters, especially in Europe and in the US market. So, we have to wait for the winters and to see how the demand, to look at the crude demand. And the prices will depend upon the demand, and plus also the other factor which is will influence the crude price and the crude demand is escalation of conflict in the Middle East.
In the Middle East, yes. That's so another factor.
These are the two factors, you know. There are three factors, like Chinese demand, the likely demand in Europe and other in the winter demand, and of course the Gulf crisis. All these three factors will influence the
That makes the
price.
Russian oil all the more important, important if you may say so.
और सोना और चांदी का हाल जानते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना अंतिम समाचार मिलने तक गिरावट के साथ 71,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 999 फाइन भी गिरावट के साथ 84,730 रुपये प्रति 1 किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, रिपोर्ट ये भी है, कहने वाले कहते हैं कि 2030 तक जो है सोना 1.5 लाख से ज्यादा पहुंच जाएगा। तो क्या अगर पत्नियां और बहनें ये कहें कि सोना खरीद दीजिए तो खरीदना चाहिए?
सोना तो मैं नहीं एडवाइस करता हूं खरीदने के लिए, बट डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, या जो मार्केट में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, आप वहां पे इन्वेस्ट करिए अपना, क्योंकि आपको सोना अगर खरीदना है तो आपको एक तो बड़ा अमाउंट चाहिए होगा और उसकी हिफाजत करनी होगी, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप कुछ इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट हैं, गोल्ड बीज या जो गोल्ड से लिंक्ड है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आप उसमें अपना इन्वेस्ट करिए। और जैसे शादी ब्याह के मौके पे तो सोना देने का एक रिवाज तो ही है, लेकिन
हमने लास्ट ईयर भी देखा और इस साल भी देखा है कि 8 महीने में अभी साल जो है 8,000 रुपये दाम बढ़ गए हैं, हालांकि अगर हम कुछ पहले की बात करें तो फिर 10,000 होता है ये।
बट देयर हैज बीन अ करेक्शन एज वेल इन द रीसेंट, यू नो।
या बट द करेक्शन इज वेरी लिटिल, इफ यू सी द वे द प्राइसेस आर गोइंग अप।
चंद्रशेखर जी, मार्केट मंथ में आने और श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू. धन्यवाद.
थैंक यू सो वेरी मच चंद्रशेखर जी. एंड बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. द इंडियाज इक्विटी बेंचमार्क निफ्टी 50 हिट्स अ न्यू ऑल टाइम हाई व्हाइल द सेंसेक्स एंड्स नियर 82,000 मार्क. यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सेज जन धन योजना इंश्योर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पिवोटल इन वुमेन एम्पावरमेंट. एंड ऑयल प्राइसेस शेड ओवर 1.5% टुडे amid concerns over the weak Chinese demand. Well, that's it in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar with my co-anchor Vibhuti Mishra saying goodbye. Market Mantra.